आनंदी का घर। थोड़ी देर बाद, कुछ मिनटों की भारी खामोशी के बाद, आनंदी रसोई में गई और दो कप चाय लेकर बाहर आई। ट्रे रखते ही बोली, लीजिए चाय। स्वर पहले जितना कड़वा नहीं रहा। थकान अब भी थी पर तंज कम हो चुका था। विश्वनाथ चाय उठाने ही लगा था कि श्यामली ने बहुत शांत, बहुत सधे हुए स्वर में कहा, दीदी बैठिए ना, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आनंदी पहले तो झिझकी, फिर धीरे से कुर्सी खींचकर बैठ गई। श्यामली ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, दीदी आपकी हर बात सही है, आपको जितना दर्द हुआ उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन आपको एक सच्चाई बतानी है। आनंदी ने उसकी ओर देखा, पहली बार बिना गुस्से के। श्यामली ने नरमी से कहा, उस दिन हादसे के बाद जिस वक्त आपके पति की जान गई, उसी वक्त विश्वनाथ जी भी हॉस्पिटल में थे, पूरा परिवार वहीं था, किसी को होश नहीं था कि कौन कहाँ है, कौन किस हालत में है। आनंदी की आंखें हिल गईं, चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा। श्यामली ने और समझाया, अगर ये ठीक होते, अगर इन्हें थोड़ा भी होश होता तो यकीन मानिए सबसे पहले यहाँ आते, आपके दरवाजे पर, आपको अकेला कभी नहीं छोड़ते। विश्वनाथ ने सिर झुका लिया, उसके गले में कुछ अटक गया था। श्यामली का स्वर अब और गहरा और सच्चा था। आप सोचिए दीदी, जिस आदमी ने आपके पति की 10 साल वफादारी देखी, उससे मिलने क्यों नहीं आता? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खुद लड़ रहा था अपनी जिंदगी से। आनंदी की उंगलियां कांपी, उसने कप कसकर पकड़ लिया। श्यामली ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम लोग देर से आए हैं, लेकिन गलत इरादे से नहीं। विश्वनाथ जी सब ठीक करना चाहते हैं। इस बार आनंदी की आंखों में नमी आ गई, गुस्सा जैसे पिघलने लगा हो। वो धीमे से बोली, मैं बस अकेली पड़ गई थी, डर गई थी, सोचा अब कौन होगा मेरा। श्यामली ने बिना सोचे उसके हाथ पर हाथ रखा, अब हम हैं और अब सब ठीक होगा। तभी दरवाजा खटखटाया, एक छोटा सा लड़का स्कूल बैग लटकाए अंदर आया। आनंदी ने उसे देखते ही आंसू पोंछे और उसे पास बुलाकर बोली, आजा बेटा, अब सब ठीक होगा, देख विश्वनाथ जी आए हैं, ये सब ठीक कर देंगे। लड़का मासूम सी आंखों से विश्वनाथ की ओर देखता रहा और पहली बार आनंदी के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। वो बोली, सच में साहब, कोई और होता तो इस तरह कभी नहीं आता, मैंने गलत समझा आपको। विश्वनाथ कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप श्यामली को देखा। जिस तरह वो बिना आवाज ऊंची किए, बिना तर्क दिए, सिर्फ सच्चाई से इनके दर्द को शांत कर रही थी, वो पल विश्वनाथ के लिए गहरा था। कुछ देर बाद तीनों घर से बाहर निकले। आनंदी ने दरवाजे पर खड़े होकर आंखों में कृतज्ञता लिए कहा, धन्यवाद, सच में। विश्वनाथ और श्यामली धीरे धीरे कार की ओर बढ़े, एक भारी दिल लेकर, लेकिन एक अधूरा काम थोड़ा पूरा कराए थे। कार में लौटते हुए शहर की सड़कें, खामोशियां और एक अजीब सी नरमी। कार जैसे ही उस गली से बाहर निकली, अंदर भर गया एक शांत सन्नाटा, वही जो किसी भारी सीन के बाद कंधों पर उतर जाता है। ड्राइवर चुपचाप कार चला रहा था। श्यामली खिड़की से बाहर देख रही थी। विश्वनाथ ने उसकी ओर धीरे से देखा, उस नजर में कोई कठोरता नहीं, केवल एक हल्की सी राहत। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद विश्वनाथ बोला, मुझे मालूम था तुम उसे मना लोगी। श्यामली ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहती इससे पहले ही वो आगे बोला, ये तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता था। उसके स्वर में न अक्सर वाला सख्तपन था, न दूरी, बल्कि एक वास्तविक स्वीकारोक्ति। श्यामली के मन में एक अनजाना कंपन उठा। आखिर कब से विश्वनाथ को उस पर इतना भरोसा होने लगा? उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ नजरें नीची कर ली। कार एक सिग्नल पर रुकी। लाल लाइट की चमक कार के शीशे पर हल्का सा रंग भर रही थी। उसी वक्त सड़क किनारे एक कॉटन कैंडी वाला खड़ा था। गुलाबी और सफेद बादलों जैसे भाए हवा में लहरा रहे थे। श्यामली की नजर एकदम अनायास उधर खिंच गई। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ देखती रह गई, थोड़ा बच्चों की तरह, थोड़ा यादों की तरह। विश्वनाथ ने उसे देखते ही चुपचाप नोटिस कर लिया। उसने ड्राइवर से कहा, वो लाकर दो। ड्राइवर तुरंत बाहर गया, दो कॉटन कैंडी खरीदकर वापस आया और विश्वनाथ को पकड़ाई। श्यामली ने पलकें झपकाई, उसे उम्मीद नहीं थी कि विश्वनाथ ये करेगा। विश्वनाथ ने बिना कुछ बोले दोनों कॉटन कैंडी उसकी तरफ बढ़ा दी। ये तुम्हारे लिए है, खा लो। उसकी आवाज में थोड़ा आदेश, थोड़ा सख्तपन और थोड़ा कुछ छुपा हुआ था जिसे वो स्वयं भी नहीं समझ रहा था। श्यामली ने धीरे से पूछा, आपको कैसे पता कि मुझे ये बहुत पसंद है? विश्वनाथ हल्का सा झिझका, उसने आंखें सड़क की ओर कर ली। तुम्हारी उम्र के लोगों को ये पसंद होती है, बस। श्यामली ने भांहों पर उठाई, मतलब मेरी एज के लोगों को? विश्वनाथ कुछ बोलने ही वाला था कि सिग्नल हरा हुआ और कार आगे बढ़ गई। यहीं धीरे से ठहर जाता है, कॉटन कैंडी की हल्की मिठास और दोनों के बीच एक नई अनकही समझ के साथ। हवेली में कमरे के अंदर श्यामली अलमारी में कुछ व्यवस्थित कर रही थी, तभी विश्वनाथ के शब्द उस तक पहुंचे। तुम रोबोट हो क्या? कब से बस काम ही कर रही हो? श्यामली ठहर गई, हाथ हवा में ही रुक गए। धीरे से मुड़कर उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की हैरानी और हल्की सी शर्मिंदगी साथ साथ थी। आपको मुझे कोई काम है? स्वर धीमा पर ठहरा हुआ। विश्वनाथ ने सिर हिलाया। नहीं, काम तो नहीं, बस थोड़ा आराम कर लोगी तो मोटी नहीं हो जाओगी? वाक्य के आखिर में एक अजीब सी नरमी थी, जिसे कहते हुए वो खुद भी थोड़ा झेप गया। श्यामली की पलकों पर एक हल्की मुस्कान उभरी, वो मुस्कान जो छिपाना आसान नहीं था पर दिखाना भी आसान नहीं। मैं मोटी? उसने धीरे से पूछा, जैसे वो सच में जवाब जानना चाहती हो। विश्वनाथ हल्का सा पीछे टिक गया। हाँ, नहीं, मतलब बस बहुत काम करती हो। दोनों के बीच कुछ सेकंड की झिझक भरी खामोशी तैर गई, न ज्यादा औपचारिक न ज्यादा अपनापन, बस एक अजीब सी मीठी दूरी। श्यामली ने धीरे से कहा, ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। वो पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई और विश्वनाथ ने पहली बार महसूस किया, काम में डूबी रहने वाली ये लड़की जब चुपचाप बैठती है तो कमरा और भी शांत हो जाता है और उसका मन थोड़ी अजीब तरह से भरा हुआ सा।